प्रभु, राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक एवं सारे संसार के शासक यानी कुल मालिक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन यानी विष्णु जी बता रहे हैं हम ब्रह्मा जी को, सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है यानी दुर्गा है। ब्रह्मा जी, हम सभी शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। ये 29 पृष्ठ पर बता रहे हैं और प्रथम सकंद, पहला सकंद 28-29 पृष्ठ आपको पढ़कर सुना रहा दास। अब क्या कह रहे हैं विष्णु जी? बोल रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का, उस दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं यानी मैं उसी की पूजा कर रहा हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है, यानी इससे बड़ा कोई भगवान नहीं है दुर्गा तो ऊपर, और इसी की पूजा मैं करता हूं और इसी की पूजा करनी चाहिए। इस ये भाव है श्री विष्णु जी का। अब पुण्य आत्माओं, अब दुर्गा के वचन और सुनाते हैं। दुर्गा क्या बोलती है? दुर्गा कहती है कि तुम हिमालय को, राजा हिमालय को उपदेश सुना हुआ है, ज्ञान बता रही है, और वो कह रही है कि एक ब्रह्म की पूजा करो और सब पूजाएं छोड़ दो, वही पूजा की योग्य है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। ये प्रश्न नंबर 562 और 563 पर आपको सुनने को मिलेगा। यह है सातवां सकंद, ये सातवां सकंद और प्रश्न नंबर 562 संक्षिप्त देवी भागवत देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें। कहती है, ऐसे तो मेरा ध्यान करें, अब उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। अब यहां तो अटकल लगा रही है कि मेरा ध्यान करे तो ऐसे कर, लेकिन यदि तुझे पूर्ण कल्याण चाहिए मेरे हिसाब से तो उस ब्रह्म का जाप कर, उस ब्रह्म की पूजा कर। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सती थे, वह ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, वेदन माने उसको टारगेट बनाओ, उसी की पूजा करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण ओम धनुष है, ओम मंत्र है, ये तो समझो धनुष, और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। उस एकमात्र यानी एक ओम नाम का जाप कर और ब्रह्म को लक्ष्य बना ले, उसकी पूजा कर। और कहते हैं उस एकमात्र परमात्मा यानी ब्रह्म को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे यानी कोई पूजा मत कर। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्के में आरे लगे होते, उसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में एक तरह स्थित है। उस हृदय में ही विविध रूपों में प्रकट होने वाला ब्रह्म पर ब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता। वह आत्मा इस आत्मा का ओम के जाप से के साथ ध्यान करो, यानी उस मालिक का जो अंतर्यामी रूप में आत्मा के साथ है, उस परमात्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है जो उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहां रहता है, 563 पर, वह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां रहता है, ब्रह्मलोक में रहता है। अपुण्य आत्माओं, आपको पता लग गया अब विष्णु जी को कितना ज्ञान था। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई देवता भगवान नहीं मानता, उसी की पूजा करता रहता हूं। और दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, और दुर्गा का ज्ञान फाइनल है, वो ब्रह्म से ऊपर कोई नहीं जानता, ना इसे अभी तक कोई नहीं जानता ब्रह्म से ऊपर। और उसके बारे में बता रही है, ब्रह्म का ओम नाम जाप करो और वो ब्रह्म लोक में रहता है, वो ब्रह्म। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी प्राणी वहां तक, ये सभी लोक पुनर्वर्ती में है, अर्थात ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणियों की भी जन्म मृत्यु होती है, पूर्ण मोक्ष नहीं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है, ऊपर को जड़ रूपी तो पूर्ण परमात्मा है परम अक्षर ब्रह्म, और तीनों गुण रूपी शाखा है। जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बताओगा भिन्न भिन्न, तना क्या है, जड़ क्या है और मोटी डार क्या है, उसकी शाखा कौन है, पत्ते क्या है, वो सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। फिर उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के बाद उसके द्वारा बताए गए साधन से गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आता, अर्थात उसका कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, इसलिए गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम सदा रहने वाले यानी सच्चे अविनाशी सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। अपना मंत्र बताता है, मेरा मुझ ब्रह्म का मंत्र है ओम, 8वें अध्याय गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरी मेरे ओम, मेरा एक ओम मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, क्योंकि गीता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा था गीता जी को, ये ब्रह्म बोल रहा था और यू कहता मेरा ते को मंत्र है, इसको अंतिम श्वास तक जो श्रवण करता रहेगा वो मेरे वाली परम गति प्राप्त करेगा, जो मुझसे राहत मिल सकती है वो ब्रह्म लोक में चला जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी गए हुए वहां प्राणी फिर भी जन्म मृत्यु में आते हैं, पुनर्वर्ती में है उनका जन्म मृत्यु होता है, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं, ब्रह्म साधक भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि तने अगर पूर्ण परमात्मा पूर्ण मोक्ष चाहिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, और उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते। इससे सिद्ध है कि न ब्रह्म ने पूरा ज्ञान, न देवी को पूरा ज्ञान, क्योंकि देवी ब्रह्म तक बता रही है और ब्रह्म को ज्ञान नहीं, वो कहता मेरा भी कंप्लीट मोक्षदायक नहीं है मेरा ज्ञान, तत्वदर्शी संतों के पास जाओ और फिर उनको प्रार्थना करो, फिर वो बताएंगे ज्ञान, उस साधना के आधार से तू सदा के लिए जन्म मृत्यु के रोग से छूट जाएगा। अपनात्मा उस परमात्मा के पाने का कौन सा मंत्र है, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उस सचिदानंद घन ब्रह्म का यानी पूर्ण परमात्मा की साधना का ओम तत् सत ये इकट्ठा तीन विद तीन प्रकार से स्मरण करने का ये मंत्र है, तीन नाम है और तीन प्रकार से इसकी तीन विधि से स्मरण है इसका। ओम ये ब्रह्म का है और तत् सांकेतिक है, वो मंत्र और है ये दास बताएगा, ये ब्रह्म परब्रह्म का मंत्र है और सत ये पूर्ण ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों का जिस प्राणी को जाप मिल गया और आजीवन गुरु मर्यादा में रहेगा, तीनों नाम मिलने के बाद भी अगर वो गड़बड़ कर जाता है, गुरुद्रोही हो जाता है, गुरु जी से दूर हो जाता है, मर्यादा भंग कर देता है, तो भी वो पार नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी मिला रहा हो उसके, तो वो प्राणी पार होगा जो मर्यादा में रहता आजीवन जाप करेगा। तो वो ज्ञान ना ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को और ना इन ऋषि महर्षियों को और ना ब्रह्म को, ना दुर्गा को, इनके ज्ञान का सत्र इस एक एग्जाम्पल से आप पुणात्मा समझ लेना। अब इन ऋषि महर्षियों को किसा ज्ञान था ये और देख लो एक बार। इसी दुर्गा पुराण में, देवी पुराण में 414 पृष्ठ और छठा सकंद, 414 पृष्ठ और छठा सकंद ये क्लियर करेगा। इन ऋषि सतयुग के ऋषि महर्षि और ब्राह्मणों को क्या ज्ञान था? जब सतयुग के ब्राह्मणों को ऐसा ज्ञान था तो बाकी त्रेता द्वापर और कलयुग के ऋषियों को क्या ज्ञान होगा? अंडरस्टूड है। जब ब्रह्मा विष्णु में इसको ज्ञान नहीं कंप्लीट, तो इन ऋषियों के पास ज्ञान कहां से आएगा? इन्होंने तो ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया है और ब्रह्मा जी आप पर हुआ भाई बोल रहा है, एंड बैंड बोला है। ये देखो, ये है संक्षिप्त देवी भागवत और छठा सकंद। संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे है। जनमेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बता रहे हैं जनमेजय को। अब देखना राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। जय हो आलियाउडिन के ज्ञान का, सतयुग के ब्राह्मणा का। सतयुग के ऋषि महर्षि कहो, ब्राह्मण कहो, अब व्यास जी बता रहे हैं, राइटर ऑफ पुराण। अब वो इनका लेखक बता रहा है, उस लेखक ने के ज्ञान है, उन्होंने कहा है कि सतयुग के ब्राह्मण पूरे विद्वान थे, वेदों के पूर्ण विद्वान थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अरे तेरा गजब हो, यो वेदों में कितना दुर्गा की पूजा का नाम निशान भी है? ये कितने लाइयो लोकवेद, जैसे दुर्गा हिमालय को मिली, पहले तो अपनी पूजा के वो गाने गाए, मेरी पूजा ऐसे करो, एक स्थान पर बैठ जाओ, नो कर दूंगी। और फिर नो कह उस ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए और सब छोड़ दो। अब पुण्यात्मा सभी फसल है यहां पर, कोई बांग बोएगा तो बांग वाला फल मिलेगा, कोई गेहूं बोएगा तो गेहूं का फल मिलेगा। तो ये तो भांग बोनी है जो अन्य देवताओं की पूजा एक पूर्ण परमात्मा ने छोड़ गया। उस पूर्ण परमात्मा की पूजा समझ लो गेहूं बोनी, कणक बोली आपने, जो अन्नदाता जीवन दाता है, आपका जीवन बख्शेगा। अब ये दास ने नहीं कहा, आप जी के सदग्रंथों से प्रमाणित किया, इनसे पढ़कर दास बताता है कि ना तो ब्रह्मा जी को ज्ञान था, भक्ति का कह कह नहीं जाने थे, ना विष्णु को ना शिव जी को, और न ही इन ऋषि महर्षियों को जो आज तक हमें मूर्ख बनाते रहे, इनको कोई ज्ञान नहीं था, कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। ये क्या करते रहे? सिद्धियां, हठ योग, तपस्याएं करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते, एक दूसरे पर किसी का आग ला दी, किसी की बुझा दी, किसी ने सागर पी लिया, पानी पर चल के जल के ऊपर के चल के दिखा दिया, इनमें उलझ पुलझ होकर अपना जीवन खो गया। हम भोली आत्मा उनके इन कृष्णों को देखकर, जो कतिकरण के ना थे, ना देखने के थे, हम इनके ऊपर आसक्त हो गए, इनको मेरे शीर बड़े पहुंचे हुए महापुरुष मानन लाएंगे। हम इन पर ऐसे आसक्त रहे। अब प्रसंग चल रहा है के सच्चे साहेब, सच्चा साहब, सत साहब, सत साहेब कहो, सत साहब कहो, यानी जैसे आदमी जब कति दुखी हो जाने का, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे भगवान, हे सच्चे स्वामी, यानी इसका मतलब है को नकली स्वामी भी से अपना। नकली स्वामी कौन है? जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये यहां के हमारे नकली स्वामी हैं, इस जेल के जेल में मालिक हैं। क्या बताते हैं? और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अपुण आत्माओं, ये जो आपको अभी एक शब्द सुनाया था, ये कबीर परमात्मा की शब्दावली में लिखा हुआ है, लेकिन ये नितानंद जी एक अच्छी आत्मा थी, ब्राह्मण घर में इनका जन्म था और लगभग 200 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। तो इन्होंने कबीर साहब की वाणी कुछ अन्य, क्योंकि जिज्ञासुओं को कहीं ना कहीं से परमात्मा की तलाश होती है, कोई इनको उनकी महिमा का कोई ग्रंथ वो ढूंढ लेता है, पढ़ लेता, पढ़ा लिखा था ये, शिक्षित था, तहसीलदार लगा हुआ था, फिर इसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। एक विष्णु जी के उपासक संत गुमानी दास जी इनको मिले, उन्होंने इनको ज्ञान दिया, समझाया, तो इन्होंने अपनी नौकरी आदि त्याग कर और फिर भक्ति में लग गए थे। अब जैसा जिस पुण्यात्मा को गुरु मिलता है वैसी ही वो साधना पर आरूढ़ हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति आत्मा करे बिना रह नहीं सकती। ये जब से भगवान से बिछड़ी है इसको उसकी उसी दिन से चाह पड़ गई है, क्योंकि यहां आकर के इसने वो दुख देख लिए जो इसके हृदय को हला देते हैं, और वहां वो सुख था जिसकी तलाश अब ये यहां कर रही है। यहां कभी सुखी नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट से, दृष्टिकोण से, चाहे ब्रह्मा बन लो, चाहे विष्णु शिवजी बन ले, ये भी सुखी नहीं हो सकता यहां पर। क्योंकि अभी आपने देखा देवी पुराण में विष्णु जी कहते हैं मैं अधिकतर तप करता हूं सिद्धि प्राप्त करता है और फिर राक्षसों के साथ लड़ता हूं, थोड़ा बहुत कोई समय मिला है तो अपनी पत्नी यानी लक्ष्मी के पास थोड़ी बहुत देर बैठ सकता हूं, फिर बाकी तो मैं ऐसे ही धक्कम धक्का रहता हूं। तो ये कहां सुखी, विष्णु कहां सुखी, ब्रह्मा कहां सुखी, इनके जीवन देखो सारे, और शिव जी कहां सुखी। तो वो सुख हमें सतलोक में मिलेगा, जब तक वहां नहीं जालेंगे इतना हम सुखी नहीं हो सकते, चाहे यहां पर राष्ट्रपति बन जाए, चाहे पूरी पृथ्वी के पति बन जावा, और चाहे कितना धन और कितनी संतान हो ले, जीव सुखी नहीं हो सकता। तो सतलोक जाने के लिए सब प्रयत्न हमने करना है, और यहां वही, ये वही टीचिंग है, ये वही ट्रेनिंग है वहां सतलोक जाने की, इस सतलोक आश्रम करो था और बरवाला में, और इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि उस नितानंद जी ने परमात्मा की इस वाणी को ले लिया और लास्ट में छाप अपनी ला दी। हमने इस चीज से कोई लेना देना नहीं, हमने तो इसके अंदर क्या निष्कर्ष है, हमें क्या संकेत है, हमने तो उस संकेत को पकड़ना है, क्या बता रहे हैं। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, केसो व गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब जागना क्या है और सोना क्या है, हम सो रहे थे अज्ञान अंधेरे में और मोह ममता की निंद्रा में हम गहरे सोए पड़े थे। अब परमात्मा हमें जगा रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा, आवाज लगा लगा के क्या बताते हैं, उठ सवेरे उक्का भर लिया के जाग्या नर भाग रे। अब मान लिए जैसे एक जीवन को और आध्यात्मिक उसके ऊपर जीव आध्यात्मिक क्रिया के ऊपर एक तुलनात्मक तरीके से समझाया गया है, जैसे कोई सोया पड़ा है निंद्रा में, वो उठा दिया किसी ने, और उठ के उसने क्या किया, उक्का भर लिया या बीड़ी लाली, सिगरेट शलगाड़ी, उठ जो फू फू धुमा कर दिया सारे घर में, बालक सोए उन का भी धुमा चढ़ गया, आप भी पाप का भागी, और उन बच्चों को और दोस्त उनको और स्वस्थ खराब करे स्वास्थ्य उनका। तो कहने का भाव यह है कि उठ्या और जाग गया, जाग भी गया, उठने योग कुक्रम शुरू कर दिया, बता के जाग गया इसका अच्छा। कहते सुक्रम करा ना कोई करी तन बंदगी, फुटे त्रे वागरे। अपुण्यात्मा इसको दो तरीके से लाया जाता है। अब जागना क्या है कि आप भक्ति नहीं कर रही, सत्संग के वचनों से आप एकदम फटक जाती है आत्मा, अकृत तेरा गजब हो, परमात्मा तो भजना चाहिए, जीवन जान जीवन हमारा जीवन जा रहा है, क्योंकि सत्संग के वचन परमात्मा की वाणी इतनी मार्मिक है, इस आत्मा को धंधेड़ कर रख देती है, इसको विवश कर देती है। तू क्या कर रही है नालायक, इस मन के चक्कर में आके, और क्या करना चाहिए था तूने, ये डले डोते असंग जन्म हो गए, तुझे अब तक आज तक कुछ भी नहीं मिला। सच्ची भक्ति करो सच्चे साहब की, उस पूर्ण परमात्मा की। तो ये पहले एकदम फड़क के उठती है, जाग जाती है, फिर भक्ति करने के लिए कहां चलती है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ पर चढ़ गया किसी मंदिर में, वहां भगवान मिलेगा। तो इसको गुमराह करने वालों का अंत नहीं, क्योंकि काल ने नरे दूत छोड़ रखे हैं भ्रमित करने के लिए। अब जैसे ऊंट सवेरे हुक्का भर लिया, मान ले आपको भक्ति की लगन भी लागी, आप जाग गए और जाकर लेकर लोटा मंदिर में पहुंचे घंटी बजान, तो के जाग गया वो, क्या लगन लागी तुझे, वो तो उल्टे को शास्त्र विधि त्याग का मनमानी जो पूजाएं तुम कर रहे हो वो व्यर्थ है, वो तो हुक्का सा भर लिया तने, दूने पाप कर रहा है। अब वहां जाके घंटी बजाते हो, घंटी बना जाने कितने जीव सूक्ष्म लगे होते हैं, मारोगे टन करा कितने जीव मार देते हो, और वहां से लेकर मंदिर तक गया वहां ना जाने कितने पैरों के नीचे सुबह सुबह जीव मार दिए, पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े ना जाने कितने मारे मंदिर तक जाने में, और फिर जोड़ का जल डाया भरकर तालाब से, उस तालाब में नरे जीव, कपड़े से छाया उस कपड़े में जीव, उन्हें निचोड़कर धोया नहाया फिर उसमें जीव मार दिए, और पुण्य एक भी कोई ना, क्योंकि घंटी बजाने में मंदिर में जाने से मूर्ति पूजा ये करने से ये शास्त्र विरुद्ध साधना होने से लाभ एक भी कोई नहीं, पुण्य आपको एक भी नहीं, नरे पाप हो गए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, और ना उनका कोई कार्य सिद्धि हो, ना उनके कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस। तो उस सच्ची साधना के करने से लाभ होगा, वो सच्ची साधना केवल 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् सत, इसके साथ हरि ओम भी नहीं लगता है, नहीं, और ओम तत्सत ये जाप नहीं है, ओम ब्रह्म का और तत् ये एक और मंत्र है, ओम और तत् दोनों मंत्र मिलकर सतनाम बनता है, और फिर तीसरा नाम एक सत 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 जो मंत्र है ये और गुप्त मंत्र है, ये तीनों मिलकर के फिर ये पूर्ण कंप्लीट मंत्र बन जाता है, वो तीसरा सार नाम है। ये है परमात्मा पाने की, ये शास्त्र अनुकूल साधना है, इससे पाप नहीं, इससे पुण्य ही पुण्य होते हैं और पाप नाश होते हैं। अपुण्यात्मा परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि अन्य देवताओं की जो पूजा तुम करते हो वो पूजाएं तुम्हारी मोक्षदायक नहीं है, उनसे तुम्हारा जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होता, और जब तक जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगा तो फिर इन पूजाओं का क्या करेंगे हम, क्या यूज इनका, नो, केवल अपना जीवन बर्बाद करने वाली बात है। अब वो सच्चा साहिब, वो सच्चा साहब, सच्चा मालिक, सच साहब, वो सत साहिब, वो कौन है और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, ये अब के इस 3 दिन के सत्संग में यही विषय रहा, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा परमात्मा कौन है और वो कुल मालिक कौन है, सच्चा साहब कौन है, सत साहब कौन है, और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम डड़े ढो रहे हैं, धूल में लठ मार रहे हैं। कहते हैं एक हाथी की पेड़ में सब जीवों की पेड़, सार शब्द जाने बिना या दुनिया मारे खेड़। खेड़ देसी भाषा यहाँ हरियाणा की, खेड़ खेड़ मारा टक्कर टकरा, कोई नोन भाज रहा है बोझा में, कोई नोन टक्कर मार रहा है, कोई इधर भाग रहा है, इधर रास्ता मिलेगा, कोई इधर भाग रहा है, क्योंकि सब यहाँ कैद में है, इसे निकलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन नोट द्वारा का टक्कर मारने से जेल से बाहर थोड़े हो सकते, वो तो उसका प्रॉपर वे अपनाओ, को बढ़िया वकील करो और अपना केस लड़ो। कहते हैं कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, ये कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। अब ये गुरु रूपी वकील आपने करना पड़ेगा, टॉप मोस्ट वकील ढूंढना पड़ेगा, ताकि इस काल के धर्मराज के पास जाके तेरा मुकदमा लड़े। ये सत्कर्मानना, जब आपको यहां से छुटवाया जाएगा, धर्मराज के दरबार में परमात्मा इस दास के रूप में प्रकट होगा, आपके साथ होगा, और उसको कहेगा कि तू इसका हिसाब कर, और फिर पूरे सवाल जवाब होंगे कि तूने इसको यहां फंसाया है, लाया था किस लिए तू इसको यहां पर, और तूने के बना दिया इसका, अपना हिसाब ले और छोड़ इसको। क्योंकि जो आपको पहले मंत्र दिए जाते हैं, जो प्रथम मंत्र आपका है, ये मंत्र पूजा नहीं हमारी, या तो मजदूरी है, हम इनके ऋणी हो गए इस काल के लोक में आके। जैसे कोई विदेश गया है और वहां को फैक्ट्री ला ली छोटी मोटी, और वह फैक्ट्री उसकी सही चली नहीं, तो उसमें क्या हो गया कि कैसे नहीं चली, उसका फिर क्या है, जैसे टेलीफोन का खर्चा था वो भरा नहीं गया, वो टेलीफोन कनेक्शन कट गया, बिजली का बिल भरा नहीं बिजली का कनेक्शन कट गया, पानी का टैक्स भरा नहीं बिल भरा नहीं पानी का टैक्स कनेक्शन कट गया, तो दूना निर्धन हो गया। आप सतलोक से आए थे और यहां आके आप फैक्ट्री ला ली, इस काल के लोक में गरबारी बन बैठे, और यहां आपके कोई सा काम ठीक नहीं चल रहा, जो पुण्य थे इतने खत्म हुए, अब पापों का दौर शुरू हो गया। तो परमात्मा ने इस दास को भेजा कि ये दास आपको उपदेश देगा, आपसे पहले वचन करा लेता है कि ये नियम निभावेगा तो मैं तुझे नाम दूंगा, तेरा ठेके तेरा जो है गारंटर बनूंगा, और ये नियम तोड़ देगा तो मैं तेरा गारंटर नहीं रहूंगा। अब जैसे एक गारंटर होता है जो कहते हैं भाई इसने मेरी गारंटी ले रखी है, तो ये दास, ये परमात्मा, ये दास आपका गारंटर बनेगा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाकर सूक्ष्म रूप से, और कहेगा कि इस आदमी को, इस व्यक्ति को, इस आत्मा को ये सभी सुविधाएं जारी कर, और तेरा जो टैक्स है किराया है ये भरता रहेगा, और गारंटी हम लेते हैं, ये नहीं भरेगा तो हम जिम्मेवार होंगे। तो कहने का भाव यह है कि आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है तो आप इसकी मजदूरी शुरू करो, इसका इसकी मेहनत करो, जाप शुरू करो, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आपकी या कमाई जावेगी, और वो आपको सुविधाएं शुरू कर देंगे यहां की, क्योंकि इसमें सबसे पहले उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र है, वो पूजा है, बाकी मजदूरी है। तो ऐसे इन सब की ना जाने कितने युगों से आप इस काल के ऋणी हो, उस सब ऋण से मुक्त होना पड़ेगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा हमारे शरीर के अंदर बने हुए कमल में, रीढ़ की हड्डी बैकबोन के अंदर की साइड में एक आंतड़ी सी बनी है, निशान से है, मामूली से, जैसे कमल के पत्ते हों ऐसे, जैसे पिक्चर सी बन जाती है, तस्वीर बना देते हैं कमल के पत्ते की, फूल की छोटी सी, बहुत छोटे पत्तों की, ऐसे आंतड़ी सी बनी हो, चिपकी पड़ी है ऐसे। और इस भक्ति करने से, ये मंत्र के जाप करने से वो क्या होगा, धीरे धीरे वो फूलनी शुरू हो जाएंगी अंदर से, वो जैसे ब्लेडर देखा होगा आपने, ये बच्चे गेंद खेल लिया करें ऐसे, वो आकर वह पतली सी चप्पल सी और उसमें हवा भरण लग गया तो फूल का नो इतना मोटी गंध बन जाती है। ऐसे ही ये चिपकी पड़ी है, खाली हो आप, आपके अंदर भक्ति नहीं रही, इसलिए ब्रह्मवाटी रिक्शे के पास कुछ को ना, किसी की टांग कटगी, किसी की आंख फूटगी, किसी का कुछ हो रहा है, कोई टेंशन है। तो ये दुख क्यों है? क्योंकि पाप से दुख है, और पुण्य बढ़ेंगे तब दुख दूर हो जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे, पाप खत्म होंगे पुण्य बढ़ेंगे सुख हो जाएगा। तो वो फिर कमल हमारे अंदर से वो भक्ति की शक्ति उसमें जमा डिपोजिट होने लग जाएगी, और वो कमल उस समय खिलेंगे, खुल जाएंगे आपके, जब आप ऋण मुक्त हो चुके होंगे। जब आप यहां से चलोगे सतलोक में, सच्चे लोक को जाओगे, अपने सच्चे साहब के पास चलोगे, तो आपने सिद्ध, कई मिसगाइड करते हैं संत कि हम तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं। अरे तेरा गजब हो, त्रिकुटी, त्रिकुटी क्या है? त्रिकुटी तो समझ लो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां से सब जिस देश को जाना चाहता है उसकी टिकट, उसका पासपोर्ट और वहां तक का किराया पहले पूरा, और उस देश का नो ड्यू सर्टिफिकेट पहले ले लेना होता है, तब वह पहुंचेगा क्या नाम है एयरपोर्ट पे, ना कोई ना जान दी एयरपोर्ट पे। तो ये त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां जाने के बाद कोई परिवर्तन नहीं उस, वहां तो जहां भी वो कौन जाएगा जो यहां से पूरे कागज पूरे करके गया होगा और ओरिजिनल जिसके पास पासपोर्ट होगा, यानी डुप्लीकेट नाम देने वाले संतों से भी वहां नहीं जाया जाता। तो वो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, हम कमल कुमला के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अरे तेरा गजब हो, ये कौन जान देगा तुझे वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जब तक तेरे यहां का देश का सारे कागज क्लियर नहीं होंगे। इन्होंने तो इंटरनेशनल एयर यानी त्रिकुटी तो ऐसी मान रखी जैसे बरवाले का अड्डा बस स्टैंड, कोई भी पैदल पहुंच जाते वैसे पहुंच जाए, बालका खेल बना रखा है, मूर्ख बना रखा है आपको। त्रिकुटी पर पहुंचने से पहले तो आपका सारा काम क्लियर होना पड़ेगा, इन कमलों से चलना पड़ेगा। जीवात्मा हृदय कमल में रहती है, यहां से वह सबसे नीचे कमल में जाएगी, मूल कमल में, मूल कमल से फिर वो आएगी ब्रह्मा के कमल में, यानी स्वाद चक्र में, जहां ब्रह्मा और सावित्री रहते हैं। मूल कमल में गणेश जी रहते हैं। तो ये सब की कमाई मंत्र आपको दे रखा है, जब आप वहां जाओगे आपके कागज क्लियर पाओगे। गणेश जी जाते आपको गए वहां से आपको टिक मार्क कर देगा जाओ आगे, फिर ब्रह्मा जी के लोक में वहां का भी सारा अकाउंट आपका क्लियर पाओगे, फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी मिलेंगी, और वहां से फिर हृदय कमल में शिव और पार्वती के लोक में वहां आएंगे, और फिर कंठ कमल में यहां पीछे को इस यहां गले के पीछे रीढ़ की हड्डी जहां थोड़ी सी बैंड होती है, ये ऊपर नाक इससे पहले चौड़ा सा स्थान है, यहां पर दुर्गा का कमल है, फिर यहां आएंगे हम। इसके बाद त्रिकुटी का नंबर आओगा, जब तक ये नियांग जान देंगे त्रिकुटी में कौन जान देगा तुमको। तो कहने का भाव ये है, ये आपको आज तक मिसगाइड करते रहे, हमें मूर्ख बनाते रहे कि बस ध्यान लगा ले ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे शाम ने, कहते झूठा ज्ञान, तुम ध्यान कहां लाओ, ये बाद विदा चतुराई, तुम तो ये चतुरता दिखा रहे हो, मूर्ख बना रहे हो बोली आत्माओं को, जो तुम्हारा ज्ञान यूजलेस है, झूठा है, ध्यान कित लाओ तुम इसमें। और वो परमात्मा तो अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है, ये अंड कहो ब्रह्मांड कहो चाहे इसको पिंड कहो, क्योंकि एक ब्रह्मांड की आकृति एक अंडे जैसी है, इसको अंड भी बोलते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, और इस एक ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ है इस शरीर के अंदर विद्यमान है। जैसे इन चैनलों में मूल कमल एक चैनल समझो, स्वाद चक्र एक चैनल समझो, नाभि कमल भी एक चैनल समझो, ये पांच छह सात चैनल हमारे लगे हुए हैं। तो जिस भी चैनल में आप झांकोगे, यानी आपका जौन सा भी कमल खुल गया, आप उसके अंदर दृष्टि जाएगी आपकी, तो इस ब्रह्मांड में उस चैनल के ऊपर यानी उस कमल के अंदर जो भी दृष्टि गोचर होगा वो आप देख सकते हो। तो इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी है वो शरीर में देखा जा सकता है, एक ब्रह्मांड के पार की वस्तु इस शरीर में नहीं देखी जा सकती। जैसे इसमें धुन सुनते हैं कान बंद करके आंख बंद करके, ऐसे बज रही है बंसुरी बज रही है बाज्य बज रही है, तो इस पिंड के अंदर इस उरले साजबाज में काल के लोक में झूठे बाजे बज रहे हैं। कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। अब परमात्मा कहते हैं कोई है उस परले पार का सतलोक का जो भेद कहे उस झनकार का, यानी सतलोक में हो रही उस अखंड धुन उस अखंड नाद का उस धुन का कोई भेद बताओ हमने आओ सामने। कोई है रे परले पार का, परले पार का यानी सतलो अंड और पिंड से पार सुदेश हमारा है, करने नो दीदार मेल में प्यारा है। इस शब्द में पूरा जो वर्णन किया है वो ये बताया है कि ये सारी झूठी रचना काल ने एक ब्रह्म लोक में दुर्गा से करवा रखी है इस जीव को धोखा देने के लिए, और फिर बताया कि हमारा लोक तो इस एंड और पिंड से भी पार है और वहां उस परले पार में कोई पहुंचा हो तो बताओ हमें, और इसमें कौन कौन यहां रह गए कौन कौन पार हुए। तो पुण्य आत्मा जब हम सतलोक चलेंगे तो उससे पहले तो सारा काम क्लियर हो लेना चाहिए आपका। जैसे इस ब्रह्मा विष्णु महेश, देखो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमारे लिए ये हमारे प्रबंधक हैं, आपका वर्क डन देते हैं, जो किया वैसा फल आपको मिलेगा और देंगे यही जब तक आप यहां हो, क्योंकि इनके ये इंचार्ज है। इनको हम बुरा नहीं कह सकते, हम अपनी बकवादों से इनके जाल में फंसे रहे। अब जब तक हम जेल में हैं तो जेल वालों की मर्यादा को भी तोड़ेंगे तो दूने पटेंगे, हमने यहां जेल की भी मर्यादा तोड़ रखी है, तो ये नियम आपको बताए जाते हैं ये जेल की मर्यादा है, इसको भंग करोगे तो आप यहीं रह जाओगे और दूना और मुकदमे बनते रहेंगे आप पर, ये नियम आपने निभाने पड़ेंगे। फिर ये सब क्लियर हो जाएंगे, फिर ये सतनाम का जो ओम और दूसरा उस तत्मंत्र है, ये दो मंत्र का दो अक्षर का जो नाम है ये सतनाम है। ओम नाम की कमाई हम त्रिकुटी पर जाकर इस धर्मराज के पास मुकदमा होगा आपका, ये न्यायाधीश बुलाया जाएगा, परमात्मा इस दास के रूप में होगा और कहेगा भी कर हिसाब इस आत्मा का और ले इसकी कमाइयां रखी सारी सतनाम की। ओम नाम की जो कमाई आप करोगे जैसे सांस उस श्वास से इस मंत्र का जाप होता है, तो ओम नाम की कमाई इस ब्रह्म को दे देंगे। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ मोक्षामी मासुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मेरे सतर की जो भी इतने सभी धार्मिक पूजाएं धर्मान उनको सभी मेरे सतर की जो शास्त्र अनुकूल साधना ओम नाम का जाप और ये यज्ञ जो आपसे करवाई जाती है हवन जो चढ़वाई जाती है या भंडारे दान कराए जाते हैं ज्ञान सुनाया जाता है ये पांच यज्ञ आपकी करवाई जाती है, इन पांचों यज्ञों का पुण्य और ओम के नाम की कमाई जो श्वास से आप करते हो ये सारी कमाई है ब्रह्म सतर की। तो ये कहता है सर्व धर्मान गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में अनुवादकर्ताओं ने इसका अनुवाद गलत किया है, व्रज का अर्थ जाना होता है, इन अनुवादकर्ताओं ने आना करता किया है क्योंकि इनको पता नहीं था इस ज्ञान का। सर्व धर्मान परितज माम गीता ज्ञानदाता कहता है माम माने मेरे सतर की जितनी भी मेरी धार्मिक पूजा है उनको मुझमें छोड़ एकम शरणम व्रज, एकम यानी जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो उस सर्वशक्तिमान गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिसके बारे में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, अब उस सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या बताया है कि सर्व धर्मान परितज माम 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में मेरे सतर की सब मेरी पूजाएं ओम नाम का जाप की कमाई और बाकी जो यज्ञ वो मुझे छोड़ दे, मुझ में छोड़, और एकम शरणम व्रज, उस परमात्मा की शरण में जाओ, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय उसकी शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी हम क्या करते थे, इस ओम नाम की कमाई ब्रह्म में चले जाते थे, ओम नाम की कमाई थे यज्ञों की कमाई से, भक्ति से ब्रह्मलोक में अपने पुण्य खा के फिर जन्म मृत्यु में आ जाते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक तक गए हुए भी पुनर्वर्ती में है, उनकी जन्म मृत्यु होती है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। तो ये क्या कहता है कि मेरे सत्र की जो पूजा है वो मुझे दे दे, अब हम इस कमाई को बर्बाद नहीं करेंगे, यहां की कोई ना स्वर्ग चाहेंगे, ना मां स्वर्ग चाहेंगे, ना ही हम देवता बनना चाहेंगे, हम तो केवल अपना पीछा छुड़वाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन जब उस तत्व ब्रह्म से और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से जीव परिचित हो जाता है, वह केवल जरा और मन से छुटकाने की प्रयत्न करता है और कोई वस्तु नहीं मांगता। तो आपको पता लग जाएगा, आप केवल उस परमात्मा को यहां से जन्म मृत्यु का पीछा छुटवाने की चेष्टा करोगे। इसलिए कहता है कि सर्वधर्मान परितज माम, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता जी में, सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय परमात्मा की शरण में चला जा, मेरे सत्र की सब पूजा मुझ में छोड़ दे, अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामी माशुच, तू चिंता ना करे मेरे सत्र की, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब हम क्या करते थे, पुण्य तो वहां खत्म कर देते, स्वर्ग महास्वर्ग में ब्रह्म लोक में, और पाप के कारण गधे कुत्ते सुअर यहां धक्के खाते रहे। अब हम इसका कर्ज दे जाएंगे, अकले तेरा कर्ज पकड़ और हमने मुक्त कर, हमने नहीं चाहिए तेरी कुछ भी, यहां की ना बर्फी चाहिए, ना लड्डू, कुछ नहीं खाना, आप पकड़ तेरे इस पैसे और हमारा अकाउंट क्लियर कर। तो ओम नाम के जो कमाई है आपके, वो तीन मंत्र के जाप की कमाई कहां आपको काम आवेगी, ओम नाम का जाप तो वहां ब्रह्म को त्रिकुटी पर दे देंगे। फिर हम चलेंगे आगे को, ये जो दूसरा मंत्र है तत्, ये और मंत्र है, इस मंत्र की कमाई आपको परब्रह्म को देनी है, क्योंकि इसके साथ शंख ब्रह्मंडों से हमने पार होना है, इसका किराया इतना हो जाएगा वहां तक जाने का, इसका टैक्स टोल टैक्स मान लो इसका। और फिर जो सत तीसरा मंत्र है, सार नाम है, ये आपको सथाई स्थान सतलोक में प्रदान कराओगा, इस प्रकार हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। कोई है रे परले पार का, कोई भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं, वारही गोरख वारही दत्त वारही धरु पर लाद अर्थ। ओह, अब कौन कौन वार रहे, उल्ट वार माने उरली तरफ काल के जाल में, और कौन परले पार हुए, वारही गोरख वारही दत्त, दत्त माने दत्तात्रेय जी, वारही धरु पर लाद अर्थ, वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पारा सर प्रकाश, वारही दुर्वा सादर वेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भरतरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन संबंध, वारही माने उरली ही ओर, वारही ब्रह्मा वारही इंद, वारही शेष कला गोविंद, वारही शिव शंकर दो संभ, वारही धर्म राय आरंभ, वारही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर, रग यजुर श्याम अथर वेद, परम धाम नहीं लहा वेद, रग यजुर श्याम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लहा भेद, अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव, वार पार था है थे हा न था, ग्रीब दास निर्गुण निगा। अब इसमें क्लियर कर दिया कि उरली तरफ गोरख भी उरले काल के ही जाल में, दत्तात्रेय दत्त ये भी इसी काल के जाल में, और धरु और प्रह्लाद भी काल के ही जाल में, ये भी पार नहीं हुए। अपुण्यात्माओं, ये है वो तत्व ज्ञान जो सबकी धज्जियां उड़ा देगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का इव करता चले मैदान। अब आपने प्रारंभ में देख लिया ब्रह्मा विष्णु महेश को के ज्ञान था, तो पार क्यों करोयोगे? और ध्रुव पर लाद इन के रगड़ा ला रहे थे, इनकी पूजा करते थे, ये पार कहां गए होंगे? ये भी उरली तरफ। गोरखनाथ जी कौन थे? शिव जी के उपासक थे, ये भी उरली तरफ। ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी ये सारे उरली तरफ रहे, काल के जाल में रहे। और वार ही धर्मराय धर धीर और परम धाम पहुंचे कबीर की। और परमात्मा स्वयं ही, क्योंकि वो स्वयं ही संत बनकर आए थे, स्वयं ही एक दास की भूमिका की, स्वयं ही एक सच्चे भगत की भूमिका की। और आपको बताया कि मगर से सह शरीर चले गए थे परमात्मा और सतलोक में गए। इस प्रकार हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे और इस प्रकार हमें प्रभु प्राप्ति होगी, हमारा जन्म मृत्यु सदा के लिए छूटेगा। बोलो सतगुरुदेव।